मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे भारत के निर्यात विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले एक जो छोटी सी खबर अखबार में छपी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से एक राज्य उत्तराखंड भी था और उत्तराखंड में सरकार बन चुकी है। आप जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने घोषणा की है कि वे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, जिसको आप कॉमन सिविल कोड कहते हैं, वो लागू करेंगे और उसके लिए बकायदे वो एक समिति बनाएंगे, विशेषज्ञों की समिति होगी, फिर उसके रिकमेंडेशन पर वो विचार करेंगे। खासकर जो समान नागरिक संहिता का जो टॉपिक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। उसका कारण यह है कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसका अनुच्छेद जो 44 है, उसके तहत हमारे संविधान ने राज्यों से या अपेक्षा की है, या कह लीजिए कि आप यूं मार्गदर्शन दिया है कि कोशिश की जाए कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बन सके। तो एक गाइडलाइन उन्होंने दे दी, या यूं कह लीजिए कि एक डायरेक्शन उन्होंने दे दिया, लेकिन जब भी समान नागरिक संहिता बनाए जाने की बात होती है तो ये लगातार विवाद में फंस जाता है। खासकर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यदि सबके लिए समान नागरिक संहिता बन गई तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा, है ना। उनकी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर आंच आएगी। इसलिए अभी तक सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर पाई है, जबकि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात कही है कि ऐसा किया जाना चाहिए। यहां एक तथ्य आपको और बताना चाहूंगा कि जो गोवा है, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि वहां पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 में लागू हुई थी, 1867 में, और उसे ही समान नागरिक संहिता कहा जाता है। अब देखिए कि उत्तराखंड सरकार इसके बारे में कहां तक सफल हो पाती है, और यदि उसने सफलता हासिल कर ली तो ये मान करके चलिए कि फिर दूसरे राज्य भी हो सकता है कि इस दिशा में कदम उठाएं। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से आपको इसके बारे में अपना मत स्थिर कर लेना चाहिए कि वास्तव में समान नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए। भारत जैसे देश में जिसका स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इतने सारे लोगों को छूट दी गई हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और फिर हम इसे भी इनकार नहीं कर सकते कि हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो कैसे समान नागरिक संहिता और अभी जो मैंने बातें की हैं उनके बीच में संतुलन बनाया जा सकता है, या दोनों के बीच में क्या टकराव है, इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के बाद आप अपना मत स्थिर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें यह प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के खासकर इस निर्णय ने एक प्रकार से इस विषय को फिर से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है भारत के निर्यात को लेकर। आपने अखबारों में पढ़ा कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, हमने एक्सपोर्ट किया है 400 बिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास, जो बहुत ज्यादा राशि है, अभी तक का रिकॉर्ड। हालांकि सरकार ने इतना लक्ष्य रखा हुआ था कि हम इतना निर्यात करेंगे, ठीक है हमने निर्यात इतना कर लिया है, लेकिन याद रखिए कि निर्यात हमारा बढ़ा है तो इसके साथ ही साथ हमारा आयात भी बढ़ा है, और हमने भले ही 400 अरब डॉलर का सामान दुनिया को भेजा हो, लेकिन दुनिया से हमने अभी तक बिल्कुल इसी समय 589 अरब डॉलर का सामान मंगाया भी है, 589 डॉलर का सामान। इसका मतलब है कि जो हमारा व्यापार घाटा है वह 189 डॉलर का है। अभी भी हम घाटे में हैं, लेकिन फिर भी जो वृद्धि है उस वृद्धि से ही हम अपने इस आयात घाटे को, या कह लीजिए व्यापार घाटे को, कम कर सकेंगे। और तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक उपाय और है कि हम आयात कम करते जाएं, लेकिन वो एक अलग विषय है, उस पर मैं अभी बात नहीं करने जा रहा हूं। ये एक टॉपिक है, चूंकि हमने निर्यात में एक रिकॉर्ड कायम किया है अब तक का, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो विदेशी व्यापार है, जिसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं, इस साल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। और जब मैं कह रहा हूं इस साल के लिए, तो आप प्री एग्जामिनेशन में भी इसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, जब मैं प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं तो वहां उसमें सीधे सीधे कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी वस्तुओं का हम ज्यादा निर्यात करते हैं, किन वस्तुओं का अभी निर्यात की वृद्धि में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा योगदान रहा है। हो सकता है कि एकाध प्रश्न इस तरह के हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है, मैं अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष की बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था की नहीं। देखिए, जो हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है ये अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है अर्थशास्त्र के, वह है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, और दूसरा टॉपिक है विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो जब मैं फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा हूं तो वो अर्थव्यवस्था हो जाता है, और जब भुगतान संतुलन की बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो वह अर्थशास्त्र हो जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2-3 साल पहले बकायदे बैलेंस ऑफ पेमेंट से शायद एक ही साल में 2-1 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत बड़ी बात है। इसे आप इस साल के लिए भी एक तरह से स्वीकृत सिद्धांत मानकर चल सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस टॉपिक की आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, और मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा जटिल किस्म का टॉपिक है, इसके बहुत ही हल्के हल्के शेड हैं। आप 2-3 को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो एक ही जैसी बात कही जा रही है, लेकिन इनफैक्ट वो एक ही जैसी बात नहीं होती। और जब इसके तहत आप 10-12 जो भी परिभाषाएं आती हैं, जो भी तथ्य आते हैं, जब आप उन सबको पढ़ लेंगे तो उनमें आपस में घालमेल होने की आशंका बनी रहेगी कि ये बात उसमें मिल गई, वो बात इसमें मिल गई। तो बहुत बहुत और बहुत जरूरी है कि बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत समझदारी के साथ इस टॉपिक को पढ़ें। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को समझाने के लिए जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है उस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस जटिल टॉपिक को बहुत अच्छे और सरल तरीके से समझाने में मुझे सफलता मिली है, जिसका मुझे आत्मसंतोष है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यदि वो इस बार के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये जो लेक्चर है, इससे संबंधित जो लेक्चर है भुगतान संतुलन से संबंधित, इसे बार बार रिवाइज कर लें, इस पर अच्छे तरीके से पकड़ बना लें। जब मैं कह रहा हूं इस पर अच्छे तरीके से पकड़ बना लें, तो देखिए आपको सब मालूम होनी चाहिए कि जो इसकी परिभाषा है इसका अर्थ क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यह एक ऐसा लेखा विवरण होता है जिसमें देशवासियों के शेष विश्व के साथ एक निश्चित काल में किए गए सभी आर्थिक लेन देन की व्यवस्थित जानकारी होती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है ये, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको देखना पड़ेगा जो रेजिडेंट शब्द का प्रयोग किया गया है या देशवासियों का, उसका अर्थ क्या। देशवासियों का ये नहीं कि जो भारत में रह रहा है वही देशवासी है, उसका एक सिस्टमेटिक उसकी डेफिनेशन है। फिर आर्थिक लेन देन है ना, इसमें आने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, आर्थिक लेन देन। तो आर्थिक लेन देन का क्या मतलब होता है, यानी कि सामान भेज दिया, सामान मंगा लिया, यही आर्थिक लेन देन है। उसके भी डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा कि विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, इनविजिबल आइटम क्या होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना और समझना पड़ेगा, तभी आप इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे। केवल इतना ही नहीं है, आपको देखना होगा कि क्रेडिट साइड क्या होता है, डेबिट साइड क्या होता है, संतुलित बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, अधिशेष जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, घाटे का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ फिर ट्रेड क्या होता है। याद रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग अलग बातें हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो दो रूप हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड वह क्या है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड वो क्या होता है, फिर करेंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट क्या है, डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट क्या है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैंने जितने सारे नाम लिए हैं वो सब नाम आपको भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हैं, और अभी मैंने जानबूझकर आप सबको भ्रमित कर दिया है, क्योंकि यह टॉपिक है ही ऐसा, तो मैं क्या करूं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके एक एक बिंदु के बारे में आपको बताना चाहिए ताकि आप इस पर अच्छी सी तैयारी कर सकें। दोस्तों, अब है हमारा निर्यात बढ़ा, अखबारों में काफी इसके बारे में दिया गया है, आप सब उन्हें देख लेंगे। 400 अरब डॉलर के टारगेट को हमने छुआ है, जो हमारा निर्यात बढ़ा है उसमें मोटर के कल पुर्जे, अनाज से बना हुआ सामान, चावल, गलीचे, फलों के रस, रेडीमेड सामान, कपड़ा ज्यादातर है, चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग सामान, ये बहुत ज्यादा बढ़ा। और इंजीनियरिंग सामान का तो जो एक्सपोर्ट है वो लगभग लगभग डबल हो गया है। इसी तरह से पेट्रोलियम पदार्थों से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कहते हैं, उसका भी निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा है। लगभग पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात तो सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कि बढ़ा है। जेवरात में काफी वृद्धि हुई है, और मालूम है आपको कि डायमंड को सफाई करने का काम भारत में बहुत होता है, सूरत वगैरह के साइड में तो इसका बहुत बड़ा उद्योगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसे भी उद्योग शामिल हैं जो लघु मध्यम उद्योगों के तहत किए जा रहे हैं, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके प्रति भी आप कह लीजिए कि एक संभावनाएं बन रही हैं। अब आपको जानना यह है कि क्या कारण है कि हमारा निर्यात बढ़ा है, सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं। दोस्तों, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, इशारे के तौर पर आपको यही बताना चाहूंगा कि सरकार ने कुछ चीजों में आयात शुल्क घटाया। जब आयात शुल्क घटाया जाता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है, निर्यात शुल्क में भी कमी की गई। आयात शुल्क देखिए, आपको लगेगा कि आयात शुल्क घटाने से तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आयात किए बिना हम उस वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते। कच्चे माल के रूप में हम उस वस्तु का आयात करते हैं, अगर उस पर आयात शुल्क घटा दिया गया तो हमें सस्ते में मिलेगी, फिर हम उससे कोई चीज तैयार करते हैं, फिर उस वस्तु का निर्यात करते हैं। तो यहां आयात शुल्क को इस तरीके से जोड़कर देखिएगा। घरेलू उत्पादन हमारा, हमने वस्तुओं का बढ़वाया, जिसमें कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जिसे PLI कहते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने बाहर जाकर के बहुत जगह विश्व बाजार की खोज की कि कहाँ कहाँ हम अपना सामान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी तक हमारा जो फोकस रहा है वो उत्तरी अमेरिका, कैनेडा अमेरिका जिसे आप कहेंगे, और साथ ही साथ यूरोप के देश रहे, उसमें भी पश्चिमी यूरोप ज्यादा है, लेकिन पूरा लैटिन अमेरिका या अफ्रीका और इधर एशिया के बहुत सारे हिस्से अभी छूटे हुए हैं, तो वहां बाजार की नई संभावनाएं हैं जहां अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी तथ्य हैं उन पर आपको विशेष रूप से जोर देकर के इस टॉपिक की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। हमारी जो अगली ऑफलाइन क्लासेज हैं उसके डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, और इसके लिए प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की हैं महिमा श्रीवास्तव, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो महिमा जी, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं संतोष विश्नोई, सूर्य प्रकाश पटना बिहार से, रायमा शाक्य और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार।